मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 22 जनवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का फूलों के गुच्छों के साथ अभिनंदन करता हूं और इस लाइफ मैनेजमेंट में हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, फूलों के गुच्छों के साथ। शायद आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे, क्योंकि जब एक रूटीन के वाक्यों में हम किसी नए शब्द का या कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि हमारे कान, हमारा दिमाग एक रूटीन को सुनने के और स्वीकार करने का अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए जैसे ही वो नया शब्द सुनता है, थोड़ा सा अकबका सा जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या नया शब्द आ गया। और मेरी समझ से अगर मैंने इस नए शब्द का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली इसका कुछ न कुछ कारण तो होगा ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कारण भी आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, बजाय इसके कि मैं सीधे सीधे इसका कारण बताऊं, शायद इसके माध्यम से आपको कारण पता लग जाए और आज के इस वसंत उत्सव पर मैं आप सभी का हार्दिक रूप से फिर से स्वागत करता हूं, फिर से अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। अब आपको दोस्तों कारण समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, तो क्यों नहीं आज इसी पर कुछ बातें की जाए। वसंत पर ही आज कुछ बातें करते हैं, हल्के फुल्के तरीके से और कुछ खुशनुमा अंदाज में। जिस तरह से वसंत हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करता है, एक जोश पैदा करता है, कुछ उसी तरह की आज बातें परंपरा से थोड़ा हटकर करते हैं। परंपरा से मेरा मतलब है कि जिस तरह की बातें हम लोग लाइफ मैनेजमेंट में अक्सर करते रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब भी ऐसा अवसर आए, आप सबको भी उसके बारे में 2-4 मिनट सोचने की जद्दोजहद करनी चाहिए। उसके बारे में सोचिए, देखिए, निहारिए, ऑब्जर्व कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि उसको महसूस भी कीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि वसंत, तो वसंत सही मायने में ऑब्जर्व करने के बाद महसूस करने की चीज है। अगर मैंने वसंत को अंदर से महसूस नहीं किया तो फिर वो आया, आकर चला गया, नहीं भी आया और नहीं आने के बाद फिर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो फिर मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप सब भी अपने अपने ढंग से सोच कर देखिए कि इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, आप सब ने पढ़ा है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते रहते हैं। आज के अखबार भी वसंतों से भरे हुए होंगे, कल का जो संडे का एडिशन था अखबारों ने खूब वसंत पर छापा है, आपने पढ़ा होगा, है ना, एंजॉय भी किया होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि क्या आप इससे हटकर वसंत के बारे में एक भी पंक्ति सोच सकते हैं, वसंत के किसी भी एक नए रूप को आप अपने दिमाग में ला सकते हैं, आप ला सकते हैं बशर्ते, मैं रिपीट करूं, आप ला सकते हैं बशर्ते आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व इस मायने में कि प्रकृति में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और चलिए वहां अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बशर्ते आप महसूस करें कि ये जो वसंत आ गया है इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर, आपकी भावनाओं पर, आपके विचारों पर क्या कोई असर पड़ा है। और जैसे ही आपकी पकड़ में आ जाता है कि हां इसका यह असर मेरे ऊपर हुआ है, तो आप मान करके चलिए कि वो कुछ नई चीज आपको मिल गई है। अदरवाइज तो जो मित्रों असर होता है, सच पूछे तो जब हम लोग मैगजीन में, अखबारों में इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं या कोई गाना ही सुन लिया वसंत पर, वसंत राग सुन लिया, तो थोड़ा बहुत तो अंदर से कुछ न कुछ कुलबुलाहट सी होती है, परिवर्तन होता ही है, हम उसे महसूस भी करते हैं। लेकिन अगर प्रकृति के ऑब्जर्वेशन से किसी चीज की अनुभूति होती है तो वो बहुत ही अद्भुत होती है और सही मायने में वही हमको बदलने वाली भी होती है। और मित्रों, वसंत कम से कम एक ऐसा ही उत्सव है, एक ऐसा ही दिन है। भारत के बारे में आप कह सकते हैं, अगर संवैधानिक शब्दावली का आप इस्तेमाल करें, तो ये एक तरह से सेक्युलर फेस्टिवल है। आप देखिए, अक्सर त्योहार आते हैं, हर त्योहार किसी न किसी धर्म समुदाय से जुड़ा हुआ होता है, और मैं उसके आधार पर आप सबको शुभकामनाएं भी प्रेषित करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब वसंत को आप किसको प्रेषित करेंगे? एक्सक्लूसिव किसी धर्म वाले को प्रेषित नहीं कर सकते। हालांकि जो शुभकामनाएं भी प्रेषित की जाती हैं, किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष को प्रेषित नहीं की जाती हैं, क्योंकि हम सब उसे स्वीकार करते हैं, चाहे अपने अपने किसी भी धर्म को हम मानने वाले क्यों ना हो। लेकिन वसंत एक ऐसा है कि इन सबसे परे है, एकदम ऊपर है। ये प्रकृति का उत्सव है, ये प्रकृति ने हमें दिया है। अब जरा हम फिर सोचें कि यार ये प्रकृति ने हमें क्या दे दिया, ऐसा क्या है कि इसको हम अलग से एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये बात अलग है कि हमारे जितने भी उत्सव त्योहार होते हैं उन सब का संबंध प्रकृति से और हमारी कृषि संस्कृति से तो होता ही है, ये होता है। लेकिन ये जो वसंत उत्सव है ये तो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और अभी से नहीं है। अगर आप बहुत एंशियंट लिटरेचर उठा करके देखेंगे, प्राचीनतम साहित्य, उसमें भी आपको वसंत का वर्णन मिलेगा और बहुत विस्तार के साथ मिलेगा और बहुत उमंग और उल्लास के साथ मिलेगा। मैंने तो महसूस किया है कि शायद जैसे ही कोई रचनाकार वसंत पर कुछ लिखने बैठता है ना, तो शायद कलम उसके कंट्रोल में नहीं रह जाती, वो लिखते चला जाता है। अपनी बात उसको सोचता होगा कि यार एक दो पैराग्राफ में लिखकर खत्म करूंगा, लेकिन पता लगा कि उसने 5-10 पेज फिर वसंत के ऊपर लिख दिए, क्योंकि वसंत जैसे ही आता है वह आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है। हम वसंत को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। मित्रों, इससे बचपन इस वसंत से जुड़ी बचपन की बहुत सी स्मृतियां फिलहाल मेरे दिमाग में कौंध रही हैं और बड़ा सुख भी पहुंचा रही हैं, और आज सुबह से मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। मैंने तो 2-3 दिन पहले से तभी से एंजॉय करना शुरू कर दिया है जब से मेरी पत्नी ने सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए मुझे एक सूचना दी कि 22 को बसंत है। मैंने कहा कि वाह, क्या अनुप्रास अलंकार आ गया, 22 को बसंत है और आज 22 आ गया। मैंने तो वसंत को तभी से उसी समय से जीना शुरू कर दिया है। मित्रों, इस वसंत में जीवन कहां है? चूंकि लाइफ मैनेजमेंट के तहत हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें जीवन की तलाश करें, शायद कुछ मिल जाए। आप गीता उठा करके देखिए तो गीता में एक जगह है जहां कृष्ण अपने को बताते हैं कि मैं प्रकृति में क्या क्या हूं, मतलब इस धरती पर जितनी भी चीजें उनमें से मैं क्या हूं। जब वो कहते हैं कि पर्वत, तो पर्वतों में मैं हिमालय हूं, इस तरह की बातें वो करते हैं। हाथी, तो हाथी में मैं ऐरावत हूं, राइट। उसी में आता है कि जब ऋतुओं की बात आती है तो आप अब समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा ऋतुओं में मैं वसंत हूं, यानी कि वसंत कृष्ण है। अब कृष्ण क्या है ये अब आप अपने अपने ढंग से सोचिए, क्योंकि कृष्ण क्या है मैं अगर ये बताने लगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहूंगा जरूर, क्योंकि उसके बिना फिर बात बनेगी नहीं, अधूरी रह जाएगी। आप वसंत को देखिए और कृष्ण के बारे में सोचिए, वसंत को महसूस कीजिए और कृष्ण के बारे में विचार कीजिए। शायद आपको दोनों के बीच की जो समानता है और जो शायद सबसे बड़ी समानता है वो आपको पकड़ में आ जाएगी, और यही वसंत है। देखिए, वसंत शीत ऋतु, हम कड़कड़ा रहे थे, अब तो खैर मौसम परिवर्तन हो गया है और मतलब वो कह लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, अदरवाइज होता क्या है, वसंत तक पहुंचते पहुंचते जो कड़कड़ाहट की ठंड है वो कम हो जाती है। यानी कि जो वसंत है वो उष्णता है, एनर्जी है, ताप है, गर्मी है, और जब प्रकृति की ठंड को ये वसंत की गर्मी मिलती है तो उसकी ठंड में कमी आ जाती है। गर्मी अपने आप में दुखदाई होती है, मई जून में हम सब भुगतते ही हैं, और ठंड भी अपने आप में दुखदाई होती है जिसको हम भुगतते हैं, लेकिन वसंत को हम भुगतते नहीं हैं, क्योंकि वसंत ठंड और गर्मी इन दोनों को मिलाकर के हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत, खुशनुमा और संतुलित वातावरण तैयार कर देता है। यानी कि वसंत का अर्थ हुआ संतुलन, प्रकृति में संतुलन। और मित्रों, जहां भी संतुलन आएगा आप समझ लीजिए कि जीवन अपने आप में वसंत बन जाएगा। उत्सव उमंग से जो मन मयूर है वो नाच उठेगा। प्रकृति को देखिए, मतलब वसंत ऐसा नहीं कि आज ही कोई स्विच ऑफ हो गया है, लेकिन जैसे जैसे वसंत आने को होता है, आप फूलों को देखिए, तरह तरह के रंगीन फूल, दुनिया भर के फूल, हर तरह के फूल प्रकृति में बिखरने लगते हैं। आप खेतों में चले जाइए, आप देखिए सरसों के पीले फूल, ओह क्या सौंदर्य होता है उन खेतों का, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी प्रकृति के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर किसी ने सोना बिखेर दिया हो। फूल, रंग रंग के फूल। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में आप चले जाइए जरा सा कनॉट प्लेस और उधर अकबर रोड के साइड में, और देखिए कि वहां की क्यारियों में क्या फूलों की छटा फैलती रहती है, छटाएं फैली हुई हैं। फूल, ये रंगीन फूल, अलग अलग रंग के फूल, बेहतर फूल, और ढेर सारे फूल कहां से आ गए, कहां से आ गए? किसने इन फूलों को टांक दिया है धरती के दामन पर? सीधी सी बात है, वसंत ने। और वसंत ने क्या किया है? प्रकृति में एक संतुलन ला दिया है, यानी कि जहां संतुलन है वहां उल्लास है, जहां संतुलन है वहां उत्पादन है, वहां अंकुरण है, वहां रचनात्मकता है, क्रिएशन है। जैसे ही संतुलन आएगा क्रिएटिविटी शुरू हो जाएगी। तो फूल प्रकृति की क्रिएटिविटी है, उनकी रचनाएं हैं, और जब हमारे अंदर ऐसा संतुलन आ जाता है तो बट नेचुरल की हमारी भी जो रचनात्मकता है वो झरने की तरह झरझरा कर बहने लगती है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि झरने को स्प्रिंग कहा गया, स्प्रिंग का मतलब है वसंत, झरना वसंत, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मालूम देंगे। और मित्रों, कृष्ण के जीवन में आपको यही अद्भुत संतुलन दिखाई देगा कि वही एकमात्र ऐसा पात्र है इस धरती पर जो कि कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर सकता है। विषैले नाग के का फन जो मृत्यु है, जरा सा टच कर जाए उसकी जीभ तो मृत्यु हो जाए, और उस पर वो कृष्ण बालक क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है, मृत्यु का उत्सव मना रहा है। कितना गजब का संतुलन, नृत्य में देखिए कितना संतुलन चाहिए। और भय आपके संतुलन को खराब कर देता है, मृत्यु का भय तो संतुलन को गड़बड़ा देगा। मतलब संतुलन को गड़बड़ाने का की चरम और संतुलन को साधने की चरम नृत्य, और वहां कृष्ण है, वो संतुलन है। वसंत भी मित्रों संतुलन है। तो दोस्तों, अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हम सबके अंदर हमेशा हमेशा के लिए इस वसंत को स्थापित करने की तू कृपा करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।